पाठ 18 अध्याय 11 निष्कर्ष। हम आज स्वच्छ और अशुद्ध, पवित्र और सामान्य तथा कोशेर और गैर कोशेर आहार के बहुत जटिल मुद्दे पर चर्चा जारी रखेंगे। मैं यह बताकर शुरू करना चाहता हूं कि मैं इन मामलों पर पूरी सच्चाई जानने का दावा नहीं करता। इनके इर्द गिर्द पूरे संप्रदाय और यहूदी संप्रदाय बने हैं, इसलिए उनकी मान्यताएं बहुत अलग अलग हैं। मैं आपको वही बता रहा हूं जो मुझे लगता है कि मामला है। हमने पिछले सप्ताह मरकुस 7 को देखा और मैंने आपको दिखाया कि सभी पवित्र शास्त्रों की तरह प्रत्येक पद को उसके उचित संदर्भ और उस समय के उचित सांस्कृतिक संदर्भ में रखना चाहिए, अन्यथा करना समय की पूरी बर्बादी है और सबसे अधिक त्रुटिपूर्ण सिद्धांतों को जन्म दे सकता है और उन्हें कायम रख सकता है। मरकुस 7 के लिए उचित संदर्भ कोशेर भोजन खाना नहीं था, बल्कि यह विभिन्न रब्बियों द्वारा स्थापित अनुष्ठान हाथ धोने के बारे में था। इस हाथ धोने का स्वच्छता से कोई लेना देना नहीं था। इसका संबंध उन हाथों को बनाने से था जो कोशेर भोजन को छूते थे, अन्यथा हाथों की अशुद्धता भोजन में स्थानांतरित हो जाती और इसकी स्वच्छता की स्थिति को नकार देती। अब आइए नए नियम में एक अन्य स्थान पर चलते हैं जहां कहा गया है कि अशुद्धता कम से कम भोजन की को समाप्त कर दिया गया। रोमियो अध्याय 14 पूरा पढ़ें। अब यह अध्याय संत पौलुस की तरह ही कोशेर खाने के बारे में और भी अधिक उलझन में डालता है, लेकिन यहां कुछ जानकारी है जो हमारी मदद कर सकती है। लेकिन पहले संदर्भ को स्पष्ट कर लें। यह अध्याय विश्वासियों से बात कर रहा है। वास्तव में यह मुख्य रूप से रोम में गैर यहूदी विश्वासियों से बात कर रहा है। गैर यहूदी विश्वासी जो एक मूर्ति पूजक संस्कृति में रहते हैं और जो तोरह के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, और विशेष रूप से यहूदी शुद्धता कानूनों के बारे में जिन्हें सदियों से संतों और रब्बियों द्वारा विस्तृत और विस्तारित किया गया था। मैं इसे दोहराना चाहता हूं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह पूरा पुराना नियम और नया नियम का एक छोटा सा हिस्सा यहूदी संस्कृति के भीतर यहूदियों से बात कर रहा है, उसी तरह कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो गैर यहूदी संस्कृति के भीतर गैर यहूदियों से बात करती हैं। रोमियों, कुरिंथियों, गलातियों, कुलुस्सियों और इफिसियों में गैर यहूदियों के लिए समर्पित खंड है और एक भद्दी गैर यहूदी शब्दावली का उपयोग किया गया है। याद रखें, संत पौलुस एक यहूदी था और रोमियो 14 उन खंडों में से एक है। यह अध्याय दो तरह के विश्वासियों, दोनों गैर यहूदी की चर्चा करके शुरू होता है। वे जो कमजोर भरोसे वाले हैं और वे जो मजबूत भरोसे वाले हैं। विचार यह है कि कमजोर विश्वासी आसानी से बहक जाते हैं, आसानी से नाराज हो जाते हैं, वे अनिश्चित होते हैं और आध्यात्मिक मामलों पर ढुलमुल होते हैं, और इसलिए वे आसानी से संदेह में पड़ जाते हैं कि वे जो मानते हैं वह सच है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कमजोर विश्वासी कुछ गैर यहूदी हैं जो अपनी नई आस्था में पर्याप्त रूप से परिपक्व नहीं हुए हैं, तथापि रोमन सांस्कृतिक रीति रिवाजों को छोड़ चुके थे, जिनमें रोमन पवित्र दिन, वहां दर्जनों पवित्र दिन थे क्योंकि वहां बहुत सारे देवी देवता थे। इन देवताओं और सम्राट के लिए मनाए जाने वाले धार्मिक उत्सव, यहां तक कि रोमन सरकार द्वारा मनाए जाने वाले तथाकथित सप्त भी शामिल थे। वे गैर यहूदी जो दृढ़ विश्वास रखने वाले के रूप में पहचाने जाते हैं, वे हैं जिन्होंने परिवार और सामाजिक दबावों के बावजूद पवित्र शास्त्र के सिद्धांतों का अपमान करने वाले अधिकांश रोमन सांस्कृतिक रीति रिवाजों को त्याग दिया है, और इस गैर यहूदी दुनिया के बीच वे तोरा के सिद्धांतों को अपना कर रहते हैं। ये तथाकथित दृढ़ विश्वासी अपने विश्वास में आश्वस्त हैं। वे जानते हैं कि वे जो करते हैं वह क्यों करते हैं। वे दूसरों को समझते हैं जो अपने विश्वासों का थोड़ा अलग तरीके से पालन करते हैं, और इसलिए वे उन लोगों का बेहतर तरीके से विरोध कर सकते हैं जो उनके साथ आकर उनके धार्मिक व्यवहारों पर सवाल उठा सकते हैं या उनकी आलोचना कर सकते हैं। रोमियों की पुस्तक में संत पौलुस के श्रोता यही थे, इसलिए उन्हें मूर्ति पूजक पृष्ठभूमि वाले बहुत से अज्ञानी गैर यहूदियों के समूह को बहुत से आध्यात्मिक मामलों की व्याख्या करनी है। और उन्हें अपने श्रोताओं के एक अल्पसंख्यक हिस्से से भी बात करनी है जिसमें परंपरा आधारित यहूदी, ज्यादातर मसीहाई यहूदी शामिल हैं, जिन्होंने बहुत पहले ही तोरह के अधिकांश इच्छित उद्देश्य और अर्थ को एक तरफ फेंक दिया था। इनमें से अधिकांश यहूदी बहुत पहले ही रोमन साम्राज्य में चले गए थे और इसलिए वे रोमन संस्कृति में पूरी तरह से प्रशिक्षित थे। बेशक ये सभी नए विश्वासी अपने साथ अपनी बहुत सी पुरानी झूठी मान्यताएं और परंपराएं लेकर आए थे, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। आम तौर पर वे इन धोखे को पहचान भी नहीं पाते क्योंकि वे उनके जीवन का एक ऐसा हिस्सा था जैसा कि आज हमारे साथ है। इसलिए पौलुस समझाता है कि भोजन को कभी भी विश्वासियों के बीच मतभेद का बहाना नहीं बनना चाहिए। सभी काम प्रभु के सम्मान के लिए किए जाने चाहिए। किसी को भी मसीह में किसी भाई या बहन के बारे में आलोचना नहीं करनी चाहिए जो उनसे अलग तरीके से खाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न खाएं, न शराब पिए, न ही ऐसा कुछ करें जिससे आपका कमजोर भाई ठोकर खाए। क्यों? क्योंकि यह सब परमेश्वर के राज्य के बारे में है जिसका आध्यात्मिक इसराइल एक हिस्सा है। इस नई आध्यात्मिक वास्तविकता में जबकि शुद्ध और अशुद्ध खाद्य पदार्थ अभी भी मौजूद हैं, सच्चे आध्यात्मिक इसराइल का निर्माण करने वाले विश्वासियों के लिए अनुष्ठान एक नई रोशनी लेता है। फिर संत पौलुस ने अध्याय 14 के बीच में कुछ ऐसा कहा जो मुझे लगता है कि हमें आहार नियमों के सवाल पर मामले के मूल में ले जाता है। वह पद 14 के अंतिम आधे भाग में कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी चीज को अशुद्ध समझता है तो उसके लिए वह अशुद्ध है। और बाद में पद 22 में ऐसी चीजों के बारे में जो विश्वास तुम रखते हो उसे अपने और परमेश्वर के बीच रखो, लेकिन संदेह करने वाला व्यक्ति निंदा के दायरे में आता है यदि वह खाता है, क्योंकि उसका कार्य विश्वास पर आधारित नहीं है, और जो कुछ भी विश्वास पर आधारित नहीं है वह पाप है। वह यह भी बताता है कि कोई भी चीज अपने आप में अशुद्ध नहीं है, यानी उदाहरण के लिए एक बाज या एक सुअर शारीरिक रूप से अशुद्ध नहीं बनाया गया था। यह स्वच्छता या पौष्टिक पदों के अस्वस्थ होने का मामला नहीं है। यह एक पदनाम है जो यहोवा ने कुछ चीजों को दिया है। मैं उनके चयन के सभी कारणों के बारे में निश्चित नहीं है, लेकिन मैं इस बात के बारे में निश्चित हूं कि यहोवा ने दोषपूर्ण जानवरों की कई प्रजातियां नहीं बनाई, और मुझे यह भी यकीन है कि यह सब मानव जाति को आध्यात्मिक सिद्धांतों के बारे में उसी तरह सिखाने से संबंधित है जिस तरह से हमें सिखाया जा सकता है। जबकि चर्च के अधिकांश लोगों ने यह निर्णय लिया है कि कुछ भी अपने आप में अशुद्ध नहीं है, कथन का अर्थ है कि कोशेर खाने के नियम अब लागू नहीं होते। चर्च के अन्य तत्व इसका उपयोग यह कहने के लिए करते हैं कि समलैंगिकता, पशुगमन, यहां तक कि व्यभिचार भी अब लागू नहीं होते। उनका कहना है कि संत पौलुस का कथन नैतिक सापेक्षवाद की अवधारणा को मान्य करता है, जैसा कि रोमियो 14 में थोड़ी देर बाद कहा गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में आश्वस्त हो जाए। अब आप में से कुछ लोग इस पर उपहास कर सकते हैं और कह सकते हैं कि चर्च के कुछ हिस्से ये कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों कथन मिलकर नैतिक सापेक्षवाद को ईश्वर द्वारा निर्धारित सिद्धांत के रूप में स्थापित करते हैं। खैर, ये तो यही कहता है ना? अगर कोई यह घोषित करता है कि अशुद्धता पूरी तरह से समाप्त हो गई है और हम अपने लिए क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध है ये तय करने के लिए इधर उधर भाग सकते हैं, तो आप जानवरों के साथ यौन संबंध बनाने के पहले के अशुद्ध कृत्य के खिलाफ क्यों तर्क देंगे कि अब यह ईश्वर की नजर में पूरी तरह से ठीक है? या कि जब सब कुछ शुद्ध घोषित कर दिया गया है तो वेश्यावृत्ति का अशुद्ध कृत्य भी पूरी तरह से ठीक होना चाहिए? देखिए, मैं आपको काल्पनिक परिस्थितियां नहीं दे रहा हूं, चर्च के भीतर सदियों से ऐसा होता आ रहा है। क्या आप देखते हैं कि इस तरह की सोच कहां ले जाती है?
दोस्तों, यह संभव नहीं है कि एक तरफ मसीह पर्वत पर उपदेश के दौरान यह घोषित करें कि उन्होंने तोरह का एक भी अंश अलग नहीं रखा है और जो कोई भी ऐसी बात सिखाता है उसे स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा माना जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ यह कहें कि उन्होंने शुद्ध और अशुद्ध के नियमों को खत्म कर दिया है। तो यहां हम क्या भूल रहे हैं?
हम सभी स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि पशुगमन और वेश्यावृत्ति को ईश्वर द्वारा स्वीकार्य नहीं घोषित किया गया है। इसलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए कुछ लोग चुनते हैं कि कहां अशुद्धता को समाप्त कर दिया गया है, खाना पसंदीदा लक्ष्य है, और अन्य समयों में अशुद्धता अभी भी मौजूद है। संत पौलुस का इतना अध्ययन किए जाने और अक्सर उसकी निंदा किए जाने का एक कारण यह है कि ऐसा लगता है कि वह एक पत्र से दूसरे पत्र में या यहां की तरह एक ही पद में खुद का खंडन करेगा। मुझे लगता है कि शुक्र है मुझे इस गलत फहमी के बारे में कुछ जानकारी मिली है जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। संत पौलुस का यह कहना कि प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक पवित्रता से संबंधित कुछ बातों के बारे में अपना मन बनाना चाहिए, यह है, मैंने कई अवसरों पर कहा है कि कभी कभी हमें यहूदी परंपराओं के प्रति थोड़ा अधिक सम्मान और समझ रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अक्सर वे तोरह में कानूनों और विनियमों में छोड़े गए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रिक्त स्थानों को भरने का एक ईमानदार प्रयास मात्र होते हैं। बाइबल में बहुत सारे व्यापक सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन जब उन्हें स्थापित करने के तरीके के विवरण की बात आती है तो हमारे पास बहुत कम, यदि कोई है, ठोस शास्त्रीय निर्देश हैं। इब्रानियों ने सदियों से इस मुद्दे से निपटा था और इसका परिणाम यहूदी परंपराओं की विशालता थी, जिनमें से कुछ वास्तव में बहुत ही गलत थीं। फिर भी सैकड़ों वैध मुद्दे थे जिन्हें किसी को तय करना था। यहूदियों के बीच यह पहले से ही पूरा किया गया कार्य था, लेकिन रोम के गैर यहूदियों इन नए विश्वासियों के बीच वे अभी इन मामलों से निपटना शुरू कर रहे थे और संत पौलुस समझा रहे थे कि उन्हें हमेशा वैसा ही करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता जैसा यहूदियों ने उन्हें करने का फैसला किया था। इसलिए जब वे इन कई मुश्किल मुद्दों पर ठोकर खा रहे थे तो उन्हें अपने स्वयं के समाधान स्थापित करने के लिए जो कुछ भी सीखा था उसका उपयोग करना था, और यही बात गैर यहूदी चर्च के भीतर भी हुई है। कई हजार संप्रदायों में से प्रत्येक ने रिक्त स्थान को भरने के लिए अपने स्वयं के समाधान निकाले हैं, और हम आम तौर पर एक दूसरे पर निशाना साधते हैं क्योंकि हमारा समाधान ईश्वर द्वारा निर्धारित है, लेकिन आपका नहीं है। संत पौलुस रोम के इन गैर यहूदी विश्वासियों से ऐसा न करने के लिए कह रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो कोई भी कुछ सप्ताह से अधिक समय से ईसाई है वह जल्द ही पाता है कि पवित्र शास्त्र हमें ऐसे सिद्धांत और आदेश देता है जो अक्सर हमें मुश्किल में डाल देते हैं। इसका मतलब यह है कि हम खुद को ऐसी परिस्थितियों में पाते हैं जहां हमें यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि यहोवा की आज्ञा मानने के लिए क्या करें, क्योंकि दो या उससे ज्यादा परमेश्वरीय सिद्धांत जो हमारी परिस्थिति पर लागू होते हैं एक दूसरे से मेल नहीं खाते। अगर हम एक की आज्ञा मानते हैं तो हम शायद दूसरे की अवज्ञा कर रहे हों। जब नियम आपस में टकराते हैं तो क्या करना चाहिए, यह स्थिति यीशु के दिनों में यहूदियों के बीच एक रोजमर्रा की बात थी और आज भी है। इन मुद्दों को सुलझाने के लिए रब्बियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विधि में इब्रानी में एक तकनीक शामिल थी जिसे काल वी होमर वोम एयर कहें कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है हल्का और भारी। विचार यह था कि जब किसी स्थिति पर लागू होने वाले सभी तोरह नियमों का पालन करना संभव नहीं था क्योंकि वे परस्पर विरोधी थे, तो समाधान यह तय करना था कि कौन सा नियम सबसे ज्यादा वजन रखता है। इस प्रकार हल्का और भारी, दूसरे शब्दों में हमारी कानून प्रणाली की तरह, जिसमें किसी दिए गए मामले में दो या दो से अधिक कानून लागू हो सकते हैं, न्यायाधीश का कर्तव्य यह तय करना है कि इनमें से कौन सा कानून इस निश्चित मामले के लिए सर्वोपरि है। यही काल वी होमर वोम एयर कहें का सार है।
मैं आपको एक सरल लेकिन वास्तविक जीवन का उदाहरण देता हूं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोरी टेन बूम ने नाजियों से यहूदियों को छुपाया था जिन्हें गिरफ्तार करके मार दिया जाना था। स्थानीय अधिकारियों ने कई मौकों पर उनसे पूछा कि क्या उन्हें ऐसे ऐसे यहूदी लोगों का ठिकाना पता है, और बेशक उनका जवाब हमेशा यही होता था कि नहीं, उन्हें नहीं पता कि वे कहां हैं। अब शास्त्रों में यह पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि झूठ बोलना किसी भी परिस्थिति में पाप है। धार्मिक झूठ जैसी कोई चीज नहीं है। क्या कोरी टेन बूम को सच बोलना चाहिए था, भले ही इसका मतलब उन यहूदियों को नाजियों के हवाले करना और उनके भाग्य का फैसला परमेश्वर के भरोसे छोड़ना हो?
आखिरकार झूठ बोलने के अलावा वह उस समाज के उचित रूप से लागू कानूनों का भी उल्लंघन कर रही थी जिसमें वह रहती थी, और क्या हमें अपनी मानवीय सरकारों के अधिकार के अधीन रहने के लिए नहीं कहा जाता है, क्योंकि परमेश्वर का हाथ सभी सरकारों का निर्माण करता है। दूसरी ओर बाइबल यह स्पष्ट करती है कि हर मानव जीवन यहोवा के लिए अनमोल है, और यह कि हत्या, अनुचित हत्या, एक भयानक पाप है, और यह कि यहूदी मानव जीवन एक निश्चित अर्थ में यहोवा के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे उसके चुने हुए लोग हैं, उसकी आंखों का तारा है। जैसा कि हमने तोरह के अध्ययन से सीखा है, पाप वास्तव में वर्गीकृत है और कुछ दूसरों की तुलना में अधिक बुरे हैं, और रब्बियों ने महसूस किया कि इस तथ्य पर भरोसा किया गया था। अन्यथा किसी भी मामले को हल करने का कोई उचित तरीका नहीं होगा जहां दो आदेश टकराते हैं, क्योंकि कोई वजन नहीं होगा, कोई हल्का या भारी नहीं, कोई बेहतर या बुरा नहीं, कोई अधिक महत्वपूर्ण या कम महत्वपूर्ण नहीं, सब कुछ गतिरोध में होगा।
ईसाई इस तरह के मामलों से बेतरतीब ढंग से निपटते हैं। हम अक्सर उस समय की अपनी भावनाओं और अक्सर जो भी वर्तमान में राजनीतिक रूप से सही है उसके आधार पर बिना सोचे समझे नैतिक निर्णय ले लेते हैं। हमने वास्तव में इस तरह के मुद्दों को सीधे लेने का कोई अच्छा तरीका विकसित नहीं किया है, कभी कभी उन्हें बस टाल दिया जाता है। अन्य समयों में हम खुद को रक्षात्मक स्थिति में पाते हैं। जब गैर ईसाई सही ढंग से कहते हैं कि कुछ मामलों में अमुक बाइबल नियम दूसरे अमुक बाइबल नियम के साथ संघर्ष करता है, लेकिन इब्रानियों को ऐसी कोई चिंता नहीं थी। वे अच्छी तरह से जानते थे कि लोगों को परमेश्वर के नियमों और आदेशों के संबंध में ऐसे चुनाव और निर्णय लेने होंगे, और यह एक सामान्य और दैनिक मामला था। इसलिए यहां कोरी टेन बूम के मेरे उदाहरण में हमारे पास कई बाइबल नियम या सिद्धांत टकरा रहे हैं। कालवी होमर कॉल वोम एयर इसे देखते हैं और कहते हैं, जबकि लागू होने वाले सभी नियम वैध और सत्य हैं, मानव जीवन के महत्व के बारे में एक नियम झूठ न बोलने की आज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण है, और इसीलिए मानव सरकार की मांगों को प्रस्तुत करने की आज्ञा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। फिर भी किसी भी परिस्थिति में झूठ बोलना और अपने नागरिक अधिकारियों के खिलाफ अवज्ञा करना ईश्वर का अपमान है। दुर्भाग्य से यह पतन के बाद से ही मानवीय स्थिति है। पाप से बचना लगभग असंभव है, और यही कारण है कि मसीह ने हमारे लिए जो किया वह इतना महत्वपूर्ण है। यीशु ने कई मौकों पर कालवी होमर कॉल बोम एयर दृष्टिकोण का आह्वान किया। हम में से ज्यादातर लोग लूका की किताब के अध्याय 13 में आसानी से याद कर सकते हैं, जब यीशु को बताया गया कि वह सप्त के दिन एक महिला को ठीक करके कानून तोड़ रहा था। रब्बियों द्वारा उपचार को काम माना जाता था। यहां यीशु ने ठेठ काल वी होमर कॉल बोमेबर शैली में समझाया कि जबकि वास्तव में सप्त के दिन काम करने से संबंधित नियम और उपचार से संबंधित नियम दोनों ही वैध थे, उपचार से संबंधित नियम सप्त के नियम से ज्यादा महत्वपूर्ण था। और यह मरकुस 2:27 में यीशु के स्पष्टीकरण के साथ पूरी तरह से मेल खाता है कि सप्त मनुष्य के लिए बनाया गया था, न कि मनुष्य सप्त के लिए। क्या यीशु ने इस तरह सप्त के नियमों को खत्म कर दिया? परमेश्वर नहीं। वास्तव में उन्होंने वास्तव में इस बात पर बहस भी नहीं की कि उपचार कार्य के रूप में योग्य है या नहीं। उन्होंने बस यह घोषित किया कि उस स्थिति में दयालु होना और उस व्यक्ति को ठीक करना सप्त के नियम को तोड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण था। यहां सबक यह है कि हालांकि कानून तोरह अभी भी मौजूद है और ये कि शुद्ध और अशुद्ध पदनाम अभी भी मौजूद है, कुछ स्थितियों में प्यार और दया और शालोम के नियमों को उन नियमों से
ऊपर रखने की आवश्यकता अधिक होती है। प्यार और दया और शालोम कशरुत के नियमों पर हावी हो जाते हैं जब कुछ स्थितियों में दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, ये प्यार, दया और शालोम के बारे में हमारा सामान्य मानवीय विचार नहीं है जिसे बरकरार रखा जाना चाहिए, बल्कि परमेश्वर का है। लोगों के प्रति हमारा सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण प्रासंगिक नहीं है। बाइबल का प्यार और दया अच्छा होने या हमारी गर्म भावनाओं का आनंद लेने या दूसरे व्यक्ति को खुश करने के बारे में नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर की नज़र में प्यार, दया और शालोम क्या है, ताकि हम इसे लागू कर सकें। इससे भी अधिक तथ्य यह है कि प्रेम, दया और शालोम कुछ मामलों में कोशेर खाने के नियमों और स्वच्छ और अशुद्ध के बारे में अन्य नियमों पर भारी पड़ते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे सभी मामलों में ऐसा करते हैं, न ही यह कि वे नियम अब समाप्त हो गए हैं। यही वह बात है जो पौलुस को यह कहने की अनुमति देती है कि यदि यह तुम्हारे लिए अशुद्ध है तो यह अशुद्ध है, और कि ऐसी चीजों जैसे आहार संबंधी नियम के बारे में तुम्हारा जो विश्वास है उसे अपने और परमेश्वर के बीच रखो। वैसे इसका मतलब यह नहीं है कि चीजों को गुप्त रखना है। यह मसीह के माध्यम से यहोवा के साथ एक व्यक्तिगत संबंध के बारे में है। यह परमेश्वर के प्रति आपकी आज्ञाकारिता के बारे में है, और वह जो आपको करने के लिए कहता है या न करने के लिए कहता है वह किसी तरह के समूह की सोच के विपरीत है, या वह करना जो बाकी सभी करते हैं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से बताऊंगी कि यदि मैंने व्यक्तिगत रूप से यह अनुभव न किया होता कि संत पौलुस यहां क्या कह रहे हैं, तो संभवतः इसे व्यक्त करना पहले से भी अधिक कठिन होता। इसलिए जैसे जैसे हम यीशु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध विकसित करते हैं, हम पाएंगे कि हमारा प्रभु हमें बताता है कि क्या करना है या क्या नहीं करना है, एक एक करके व्यक्तिगत रूप से। फिर भी वह हमें जो कुछ भी बताता है वह पवित्र शास्त्र में बताए गए आध्यात्मिक सिद्धांतों से बाहर कभी नहीं होगा, और वह आपको जो कुछ भी बताता है उसका आपके व्यक्तिगत जीवन में, उसके साथ और परमेश्वर के राज्य में आपके उद्देश्य से सब कुछ लेना देना होगा। अब यहां एक बात ध्यान में रखने वाली है, मैं आपसे जो कुछ भी चर्चा कर रहा हूं, कोशेर खाने के नियम, शुद्ध और अशुद्ध, इसका आपके उद्धार पर कोई भी असर नहीं है। मसीह और केवल मसीह ही बचाता है। आप और मैं पवित्रता की सीढ़ी पर नहीं चढ़ते, केवल तभी गिरते हैं जब हम पाप करते हैं, और फिर पवित्र स्थिति तक पहुंचने के लिए लंबी चढ़ाई शुरू करना। लेकिन यही तो मसीह से पहले इब्रानियों के साथ हुआ था। यीशु के आगमन पर हम जो देखते हैं वह एक महान चक्र का पूरा होना है। मूसा को पत्थर में दिया गया तोरा और इसकी सभी आवश्यकताएं और नियम और आदेश और अनुष्ठान आध्यात्मिक सिद्धांतों के भौतिक प्रतिनिधित्व हैं। आध्यात्मिक सिद्धांत जो हमेशा स्वर्ग में मौजूद रहे हैं। स्वर्ग के आध्यात्मिक सिद्धांतों को लिखित तोरह के रूप में मानव जाति के लिए लाया गया था। सदियों से उन आध्यात्मिक सिद्धांतों को निभाया गया, उनका अभ्यास किया गया, और तोरह में निर्धारित नियमों और अनुष्ठानों के माध्यम से इब्रानियों की प्रत्येक अगली पीढ़ी को सिखाया गया। तंबू, पुजारी, बलि के जानवर, आहार संबंधी नियम, सभी ने पवित्रता मुख्य आध्यात्मिक सिद्धांत को इज़राइल को समझाने और उसका अभ्यास करने में भूमिका निभाई। लेकिन जैसा कि यहोवा ने पहले से ही जान लिया था कि समय के साथ क्या होगा, मनुष्य धीरे धीरे तोरह के आध्यात्मिक उद्देश्य को भूलने से नहीं बच सका, और अंततः उसके आदेशों और अनुष्ठानों को रोबोटिक क्या करें और क्या न करें और कठोर मानव निर्मित सिद्धांतों की एक श्रृंखला में बदल दिया, तोरह का आशीर्वाद लेना और इसे सिद्धांत के बोझ में बदलना। तोरह को हमेशा यहोवा पर भरोसे और विश्वास पर आधारित होना चाहिए, अन्यथा यह अर्थहीन था। तोरह पहले से ही छुराए गए लोगों के लिए एक रास्ता था, यह छुटकारे का साधन नहीं था। ईश्वर ने अपने लोगों इज़राइल को मिस्र से छुरा या इससे पहले कि वह उन्हें तोरह देता। तोरह का उन लोगों के लिए कोई काम नहीं है जो छुराए नहीं गए हैं। यही कारण है कि तोरह साधक के लिए बिल्कुल बेकार है, लेकिन यह छुराए गए लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यीशु न केवल तोरह के आध्यात्मिक अर्थ को पुनर्स्थापित करने के लिए आए थे, या जैसा कि उन्होंने कहा, इसे अर्थ से भर दिया, बल्कि इसे इसके स्वर्गीय शाश्वत उद्देश्य पर वापस ले जाने के लिए। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि यदि आप अनुष्ठान और नियम केवल इसलिए करते हैं क्योंकि वे अनुष्ठान और नियम हैं, तो वे बेकार हैं। मिश्रण में मसीह पर भरोसा जोड़ें और अब आपके पास अर्थ है। जहां तक शुद्ध और अशुद्ध का सवाल है, मेरी राय में सामान्य तौर पर जो व्यक्ति यीशु पर भरोसा करना जारी रखता है, उसके लिए अशुद्ध होना असंभव है। फिर भी हमें बार बार चेतावनी दी जाती है कि हम अशुद्ध चीजों से दूर रहें। अगर वे हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, तो हमें अशुद्ध चीजों से दूर क्यों रहना चाहिए? क्योंकि भले ही हम अपनी पवित्रता नहीं खोते हैं, लेकिन हम अपनी अवज्ञा के कारण अपेक्षाकृत अनुपयोगी हो सकते हैं, और जबकि आज्ञाकारिता आशीर्वाद लाती है, अवज्ञा आशीर्वाद को कम करती है। पहले कुरिन्थियों में एक प्रसिद्ध उदाहरण है कि हमें बताया गया है कि हमें कभी भी किसी वेश्या, किसी अशुद्ध व्यक्ति से जुड़ने का अशुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। आइए हम इसे ठीक उसी तरह से कहें जिसका अर्थ है, किसी वेश्या के साथ यौन संबंध न बनाए, क्योंकि एक पवित्र व्यक्ति का किसी अशुद्ध व्यक्ति के साथ शारीरिक रूप से संभोग करना पवित्रता के साथ असंगत है। हम खुद को किससे जोड़ते हैं, यह पहचानता है कि हम कौन हैं। चूंकि हम मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हम मसीह के साथ पहचाने जाते हैं। इसलिए हमारी पवित्र स्थिति के कारण हमें कभी भी अशुद्ध के संपर्क में नहीं आना चाहिए। फिर भी हम अपनी पवित्र स्थिति नहीं खोएंगे, न ही हम अशुद्ध हो जाएंगे यदि हम अशुद्धता को छूते हैं। मैं इसे फिर से कहूंगा, हमें कभी भी पवित्रता के दिव्य पैटर्न का उल्लंघन नहीं करना चाहिए जिसके तहत पवित्र लोगों को अशुद्धता से अलग रहने का आदेश दिया जाता है।
अब ऐसा कैसे हो सकता है कि स्वच्छ और अशुद्ध खाद्य पदार्थ हमेशा की तरह ही बने रहें, और फिर भी एक आस्तिक अशुद्ध भोजन खाने से अशुद्ध नहीं होता? मसीह का जीवित जल होने का गुण इतना शक्तिशाली है? यह लगभग ऐसा है जैसे कि प्रभु को पता है कि हम कुछ अशुद्ध करने जा रहे हैं, और हमारे लिए शुद्धिकरण उस अशुद्धता के संपर्क में आने से पहले ही हो जाता है जो हमें अपवित्र कर सकती है। ये ऐसा है जैसे अशुद्धता होने से पहले ही हम शुद्ध हो जाते हैं। यह कुछ हद तक किसी बीमारी से प्रतिरक्षित होने जैसा है। ऐसा नहीं है कि बीमारी अब अस्तित्व में नहीं है, इसका मतलब है कि आपको इसके खिलाफ टीका लगाया गया है। ऐसा कहते हुए संत पौलुस कहते हैं कि अगर कुछ आपके लिए अशुद्ध है तो यह अशुद्ध है। इसका क्या मतलब है? मेरा मानना है कि यह हमें एक रहस्यमय तरीके से बता रहा है जो केवल पवित्र आत्मा के निवास से ही संभव है। जैसे जैसे आप प्रभु के करीब आते हैं, तब वह हम में से प्रत्येक को अशुद्धता के बारे में सिखाएगा जब हम इसे सुन सकते हैं। हम में से जिनके बच्चे और नाती नातिन हैं, उन्होंने सीखा है कि उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश करना बेकार है, यहां तक कि उल्टा भी है, जिसे सुनने और स्वीकार करने के लिए वे अभी तक परिपक्व नहीं हुए हैं, और यह निर्धारण बच्चे दर बच्चे के आधार पर किया जाता है। कोई भी दो बच्चे एक ही दर से बड़े और परिपक्व नहीं होते। मुझे लगता है कि यह उसी तरह है जब परमेश्वर हम में से प्रत्येक को यह बताता है कि हमारे लिए क्या अशुद्ध है। फिर भी ये सभी चीजें जिन्हें लैव्य व्यवस्था में अशुद्ध के रूप में पहचाना गया है, वे अभी भी अशुद्ध हैं। ये हमारे लिए कभी भी पवित्र शास्त्र में अशुद्ध चीजों से अलग नहीं होगा। इसलिए यदि आप अपनी आत्मा में जानते हैं कि प्रभु ने आपसे बात की है और उन्होंने बताया है कि कुछ आपके लिए अशुद्ध है, तो यह अशुद्ध है और आपको इससे बचने की जरूरत है। उसने आपको बताया है क्योंकि आपके जीवन के इस समय में आप इसे सुन सकते हैं, और उसके सही समय और निर्णय में आप समझने और आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं। यदि आप उसकी पुकार का जवाब देते हैं, तो आप भरोसा करने वाले और आज्ञाकारी हैं। क्या प्रभु ने आपके मन में यह बात डाल दी है कि बाइबल में वर्णित कुछ अशुद्ध भोजन आपके लिए अशुद्ध है? फिर उस पर विश्वास के आधार पर चलें, नियम या अनुष्ठान या आपके दोस्तों की सोच के आधार पर नहीं। लैव्य व्यवस्था को कुकबुक की तरह इस्तेमाल न करें
और इस बात की चिंता न करें कि दूसरे क्या सोचते हैं। वास्तव में आपको दूसरों को यह बताने की भी जरूरत नहीं है कि ईश्वर ने आपको क्या दिखाया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोशेर खाने के मामले में दूसरे विश्वासियों का न्याय न करें। कोशेर खाने वाले व्यक्ति के रूप में आपके पास शेख ही बघारने या किसी ऐसे व्यक्ति से कहने के लिए कुछ भी नहीं है जो कोशेर नहीं खाता। और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो किसी भी खाद्य पदार्थ को अशुद्ध नहीं मानता, आपके पास खुद का बचाव करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन न ही आपको किसी ऐसे व्यक्ति की आलोचना करनी है जो कोशेर खाता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। हम इस चर्चा को अनिश्चित काल तक जारी रख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसे समाप्त करने और लैव्य व्यवस्था में अपने अध्ययन को जारी रखने का समय आ गया है। आगे लैव्य व्यवस्था 12 और मासिक धर्म और प्रसव के संबंध में अशुद्धता।
लैव्य व्यवस्था अध्याय 12 पूरा परहें।
अगले कई अध्याय स्वच्छ और अशुद्ध के कुछ अतिरिक्त पहलुओं से निपटने जा रहे हैं। और जैसा कि हमने सीखा है, स्वच्छ और अशुद्ध दो शब्द हैं जिनका पवित्रता को समझाने और पवित्रता के संपूर्ण ईश्वर निर्धारित पैटर्न को प्रदर्शित करने में बहुत महत्व है। हमने लैव्य व्यवस्था के पहले कुछ अध्यायों में महीनों बिताए जो विभिन्न प्रकार के बलिदानों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रकार पाप और पवित्रता के एक अलग पहलू को संबोधित करता है। इस तथ्य से कि हमारा स्वभाव पाप से भरा हुआ है, यहोवा के विरुद्ध अवज्ञा के कार्य पाप के रूप में जानबूझकर और अनजाने में किए गए पाप हमारे साथ ही मनुष्य के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार जो भी पाप है, और यह कि पाप को कई तरीकों से वर्गीकृत किया गया है। मैं चाहता हूं कि आप अनुष्ठान शुद्धता पर हमारे द्वारा किए जा रहे इस सभी अध्ययन से यह समझें कि स्वच्छ और अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध के कई पहलू हैं, और यह कि सामान्य रूप से अशुद्ध और अशुद्ध पाप के समान नहीं है। यहोवा हमें यह सिखाने में इतना समय बिताता है, ऐसा नहीं हो सकता कि यह मायने नहीं रखता।
अब जो कुछ मैं आपको सिखा रहा हूं उसके कई चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक है चीजों का स्वच्छ और अशुद्ध नामकरण, चाहे वो चीजें लोग हों, जानवर हों, भोजन हों या कोई और चीज। किसी अंतर्निहित असामान्य शारीरिक या जैविक विशेषता का परिणाम नहीं है। उदाहरण के लिए सुअर अशुद्ध नहीं है क्योंकि वे दोषपूर्ण या स्वाभाविक रूप से दुष्ट हैं, या कि एक लॉबस्टर टेल, एक और निषिद्ध भोजन आपके लिए बुरा है, लेकिन भेड़ का बच्चा स्वस्थ है। परमेश्वर ने कुछ भी असामान्य नहीं बनाया, न ही कुछ सामान्य पशु प्रजातियों किसी तरह से मनुष्य के पतन के बाद असामान्य में विकसित हुई, बल्कि स्वच्छ और अशुद्ध वे पदनाम हैं जो यहोवा ने मानव जाति को महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सिद्धांतों को सिखाने के अंतिम उद्देश्य के लिए कुछ चीजों को दिए हैं। यह उस चीज को प्रदर्शित करने का एक तरीका था जो आत्मा की दुनिया से है, यह मनुष्य के लिए अदृश्य है, एक ऐसे तरीके से जिसे हम देख और समझ सकते हैं। मैं आपको संभवतः यह नहीं बता सकता कि यहोवा ने उन विशिष्ट जानवरों और खाद्य पदार्थों को अशुद्ध होने के लिए क्या तर्क दिया था। बाइबल किसी भी तरह से हमें यह बताने का प्रयास नहीं करती है। एक सवाल जिसका मैंने आपके लिए उत्तर दिया है वह यह है, क्या स्वच्छ और अशुद्ध के पदनाम अभी भी अस्तित्व में हैं? क्या वे हमारे लिए मायने रखते हैं या मसीह ने उन्हें समाप्त कर दिया? मेरा उत्तर निश्चित रूप से यह है कि स्वच्छ और अशुद्ध चीजें अभी भी मौजूद हैं। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोगों को इससे परेशानी होगी, इसलिए हमने मरकुस 7वें दिन ध्यान से पढ़ा, जहां यीशु ने कथित तौर पर कोशेर खाने को खत्म कर दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। यह यीशु द्वारा यह समझाने के बारे में था कि अनुष्ठानिक हाथ धोने के बारे में मानव निर्मित परंपराएं मान्य नहीं थीं। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि यह यीशु का उद्देश्य और इरादा था, क्योंकि हमें मत्ती में बिल्कुल यही कहानी मिलती है। समकालिक सुसमाचारों को समकालिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मूलतः एक ही कहानी बताते हैं, लेकिन अलग अलग दृष्टिकोणों से, विशिष्ट लेखकों के दृष्टिकोण से।
अपनी बाइबल में मत्ती 15 को खोलिए। मत्ती 15 मरकुस 7 के साथ समकालिक है, यानी ये दो अलग अलग लेखकों द्वारा बताई गई एक ही कहानी है। आइए पद 1 से 20 तक पढ़ें, मैं C.J.B. से पढ़ूंगा। मत्ती 15:1-20 पर है। तो यहां हम इस बारे में अधिक विशिष्ट जानकारी प्राप्त करते हैं कि यीशु क्या कह रहे थे। मरकुस 7 की अस्पष्टता स्पष्ट हो गई है। किसी भी तरह से यीशु ने सभी खाद्य पदार्थों को अशुद्ध घोषित नहीं किया। क्या उन्होंने किया? जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, यह पूरी कहानी हाथ धोने की मानव निर्मित रस्म और एक हद तक सभी मानव निर्मित परंपराओं के बारे में थी। यीशु भोजन के बारे में एक पूर्व बाइबल आदेश को खत्म नहीं कर रहे थे। यदि यीशु का वास्तव में यह मतलब था कि अशुद्ध चीजों का सभी संदर्भ अब अप्रचलित हो गया है, कि अशुद्धता अब अस्तित्व में ही नहीं है, तो हमें कई नए नियम के शास्त्रों के साथ एक वास्तविक समस्या है, जिनमें से सबसे कम नहीं मत्ती 5:17-20 में मसीह के शब्द हैं, जहां उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे तोरह को खत्म करने नहीं आए हैं, कि एक भी अक्षर या शीर्षक समाप्त नहीं किया गया है, और जो व्यक्ति कहता है कि ऐसा किया गया है उसकी सहायता परमेश्वर करे। फिर रोमियो 14 में संत पौलुस का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति इसे अशुद्ध समझता है तो यह उसके लिए अशुद्ध है, क्योंकि संत पौलुस समझौता करने वाला कुछ भी नहीं था। ऐसा कोई तरीका नहीं है यीशु की मृत्यु के लगभग 2 दशक बाद कि वह किसी को सीधे यीशु द्वारा कही गई बातों के विरुद्ध कुछ कहे। यदि उसने ऐसा किया तो हमें तुरंत अपने नए नियम का लगभग आधा हिस्सा फेंक देना चाहिए, क्योंकि संत पौलुस सबसे बुरे किस्म का विधर्मी होगा। पौलुस यह नहीं कहता कि अगर यह तुम्हारे लिए अशुद्ध है तो यह अशुद्ध है, अगर यीशु के अनुसार अशुद्ध जैसी कोई चीज नहीं होती। इसके अलावा पौलुस के दूसरे पत्र में सुनिए, इफिसियों 5:5, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूरत पूजने वाले के बराबर हो, मसीह और परमेश्वर के राज्य में कोई मीरास नहीं। लेकिन यह नया नियम में एकमात्र स्थान नहीं है जहां हम पाते हैं कि अशुद्ध का अस्तित्व बना हुआ है। 2 कुरिन्थियों 6:15 में संत पौलुस को सुने, मसीह का बलियाल से क्या संबंध है, या एक विश्वासी का एक अविश्वासी के साथ क्या संबंध है, 16 मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा कि परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें निवास करूंगा और उनके बीच चलूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। 17 इसलिए प्रभु कहता है, उनसे अलग हो जाओ और उनसे अलग रहो और किसी अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। 18 और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियों होंगे, सर्वशक्तिमान प्रभु कहता है। स्पष्ट है कि पृथ्वी पर अभी भी शुद्ध और अशुद्ध के बीच का अंतर विद्यमान है, क्योंकि यहां पौलुस यहोवा के कथन को उद्धत कर रहा है कि वह अपने राज्य में तुम्हारा स्वागत करेगा यदि तुम 1 उनसे अधर्मियों से बाहर निकल आओ, 2 उनसे अलग हो जाओ और 3 किसी भी अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। अब आइए सुने कि प्रेरित यूहन्ना ने पवित्र शास्त्र की लिखी जाने वाली अंतिम पुस्तक में क्या कहा था। पौलुस के पहले पत्र के लगभग 30 वर्ष या उससे भी अधिक समय बाद और मसीह के क्रूस पर चढ़ने के लगभग 50 वर्ष बाद, प्रकाशित वाक्य 22:22, और मैंने नगर में कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि उसका मंदिर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना है। 23 और उस नगर को सूर्य या चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा उसका प्रकाश है और उसका दीपक मेमना है। 24 उसके प्रकाश में जाति जाति के लोग चलेंगे और पृथ्वी के राजा अपना वैभव उसमें लाएंगे। 24 और उसके फाटक दिन में कभी बंद न होंगे और न उसमें रात होगी। 24 वे जाति जाति के लोगों की महिमा और सम्मान उसमें लाएंगे। 27 परंतु कोई अशुद्ध वस्तु या कोई घृणित काम या झूठ का अभ्यास करने वाला उसमें प्रवेश न करेगा, परंतु केवल वे ही जो मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। यूहन्ना कहता है कि किसी भी अशुद्ध व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में कोई उत्तराधिकार नहीं मिलेगा और परमेश्वर के लोगों को अविश्वासियों से अलग रहना चाहिए और किसी भी अशुद्ध वस्तु को नहीं छूना चाहिए। यूहन्ना मूल रूप से इसे दोहराता है। यहाँ हमारे पास नए नियम के उदाहरण हैं जहाँ विश्वासियों को अशुद्ध चीज़ों से खुद को जोड़ने के खिलाफ चेतावनी दी गई है। जाहिर है यहाँ तक कि अंत के दिनों में भी, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य 21 बात कर रहा है, अशुद्ध लोग और अशुद्ध चीज़ें बनी रहेंगी। इसके अलावा जैसा कि हमने कई अवसरों पर चर्चा की है, हम एक समानांतर ब्रह्मांड में रहते हैं जिसे मैंने द्वैत की वास्तविकता करार दिया है, अर्थात ब्रह्मांड में दोहरी वास्तविकताएं हैं जो एक साथ मौजूद हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। यदि भौतिक दुनिया में पवित्रता है तो आध्यात्मिक दुनिया में भी पवित्रता होनी चाहिए। यदि भौतिक दुनिया में बुराई है तो आध्यात्मिक दुनिया में भी बुराई होनी चाहिए, और यदि भौतिक दुनिया में अशुद्धता है तो आध्यात्मिक दुनिया में भी अशुद्धता होनी चाहिए। यहां शास्त्रों का एक छोटा सा नमूना है जो हमें अशुद्ध चीजों के बारे में बता रहा है, जो न केवल भौतिक दुनिया में बल्कि यीशु के आने के बाद आध्यात्मिक दुनिया में भी मौजूद हैं। मत्ती 10:1, और उसने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और हर बीमारी और हर दुर्बलता को ठीक करें। मरकुस 1:23, और तुरंत उनकी आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। प्रेरितों के काम 5:16 और यरूशलेम के आसपास के नगरों से लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और वे सब के सब अच्छे कर दिए जाते थे। प्रेरितों के काम 8:7, क्योंकि बहुत से लोगों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से झोले या लंगरे अच्छे किए गए। इसलिए नया नियम शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अशुद्धता अभी भी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दुनिया में मौजूद है। अच्छाई, अगर अशुद्ध जैसी कोई चीज नहीं थी तो प्रेरित हमें उन चीजों से दूर रहने की चेतावनी क्यों दे रहे हैं जो मौजूद ही नहीं है? उत्तर, बेशक यह अभी भी मौजूद है। स्वच्छ चीजें वे सभी चीजें हैं जिन्हें विशेष रूप से अशुद्ध नहीं माना गया है। और मेरे पास आपके लिए एक खबर है, आप और मैं अपनी इच्छाओं के अनुसार अशुद्ध चीजों की बाइबल की सूची को फिर से नहीं लिख सकते। पवित्र आत्मा आपको कोई नई अशुद्ध चीज नहीं देगा जो पहले मौजूद नहीं थी, न ही कोई अशुद्ध चीज हटाएगा। हम परमेश्वर के वचन को बदल नहीं सकते, और शुद्ध और अशुद्ध क्या है इसकी जानकारी का एकमात्र स्रोत तो रहा है।
हम अगली बार अध्याय 12 जारी रखेंगे।